divine grace, the Vedanta Swami Srila Prabhupada ki
jai,
Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki
jai,
Namacharya Srila Haridas Thakur ki
jai,
Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sri Nitai Gaura Hari ki
jai,
Nitai Gaura Premanande, Samaveta Bhakta Vrinda ki
jai,
Samaveta Bhakta Vrinda ki
jai,
Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Sri Sri Guru Gauranga ki
jai.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Narayanam Namaskritya.
Narayanam Namaskritya.
Naram Chaiva Narottamam.
Naram Chaiva Narottamam.
Devim Sarasvatim Vyasam.
Devim Sarasvatim Vyasam.
Tato Jayamudiraye.
Tato Jayamudiraye.
Nashta Prayeshva Bhadreshu.
Nashta Prayeshva
Nityam Bhagavata Sevaya.
Nityam Bhagavata Sevaya.
Bhagavatyuttama Shloke.
Bhagavatyuttama Shloke.
Bhaktir Bhavati Naishthiki.
Bhaktir Bhavati Naishthiki.
Granthraj Srimad Bhagavatam, 4th Skanda, 31st Adhyaya. प्रचेताओं को नारद का उपदेश श्लोक संख्या 4 तम
तमम
आगतम
आगतम
ते
उत्थाय
उत्थाय प्रणिपत्य
प्रणिपत्य
अभिनंद्य
अभिनंद्य
च
पूजयित्वा
यथा आदेशम
यथा आदेशम
सुखासीनम
सुखासीनम
अथ
अथ
अब्रुवन
अब्रुवन
तमागतं त उत्थाय
तमागतं त उत्थाय
प्रणिपत्याभिनन्द्यच
प्रणिपत्याभिनन्द्यच
पूजयित्वा यथादेशम्
पूजयित्वा यथादेशम्
सुखासीनं मथा ब्रुवन्
सुखासीनं मथा ब्रुवन्
तमागतं त उत्थाय
तमागतं त उत्थाय
प्रणिपत्याभिनन्द्यच
प्रणिपत्याभिनन्द्यच
पूजयित्वा यथादेशम्
पूजयित्वा यथादेशम्
सुखासीनम् अथा ब्रुवन्
सुखासीनम् अथा ब्रुवन्
तमागतं त उत्थाय
तमागतं त उत्थाय
प्रणिपत्याभिनन्द्यच
प्रणिपत्याभिनन्द्यच
पूजयित्वा यथादेशम्
पूजयित्वा यथादेशम्
सुखासीनम् अथा ब्रुवन्
सुखासीनम् अथा ब्रुवन्
तमागतं त उत्थाय
तमागतं त उत्थाय
प्रणिपत्याभिनन्द्य च
प्रणिपत्याभिनन्द्य च
पूजयित्वा यथादेशम्
पूजयित्वा यथादेशम्
सुखासीनम् अथा ब्रुवन्
सुखासीनम् अथा ब्रुवन्
तमागतं त उत्थाय
तमागतं त उत्थाय
प्रणिपत्याभिनन्द्य च
प्रणिपत्याभिनन्द्य च
पूजयित्वा यथादेशम्
पूजयित्वा यथादेशम्
सुखासीनम् अथा ब्रुवन्
सुखासीनम् अथा ब्रुवन्
तमागतं त उत्थाय
तमागतं त उत्थाय
प्रणिपत्याभिनन्द्य च
प्रणिपत्याभिनन्द्य च
पूजयित्वा यथादेशम्
पूजयित्वा यथादेशम्
सुखासीनं सुखासीनम अथा ब्रुवन्
सुखासीनम अथा ब्रुवन्
तम
तम
उसको
उसको
आगतम
आगतम
आया
हुआ
ते
ते
सभी
प्रचेता
उत्थाय
उत्थाय
उठकर
उठकर
प्रणिपत्य
प्रणिपत्य
नमस्कार करके अभिनंद्य
अभिनंद्य
स्वागत करके च
च
भी
पूजयित्वा
पूजा
करके यथा आदेशम
विधि पूर्वक
सुख आसीनम
सुख पूर्वक आसीन होकर अथ
इस प्रकार
अब्रुवन
उन्होंने कहा
तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद प्रचेताओं ने ज्यों ही देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं वे नियमानुसार तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए यथा अपेक्षित तुरंत उन्होंने नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे और जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। यह उल्लेखनीय है कि सभी प्रचेता भगवान पर अपना मन केंद्रित करने के उद्देश्य से योग साधना कर रहे थे। बस इतना ही तात्पर्य है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं प्रापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहप्रजातं सहगन रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे
मूकं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपासिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबलान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्येण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमतो मां श्रीचैतन्यमहाप्रभो नमतमिदं तत्राधरः न परः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त
कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये।
जय
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीवद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो प्रसंग ये चल रहा है कि प्रचेतागण नारद मुनि का संग प्राप्त कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि प्रचेतागण अपने युग अवस्था में भगवान का दर्शन कर चुके थे। उनका सौभाग्य देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसे एक सभ्यता में, एक संस्कृति में उनको जन्म मिला जहाँ की भगवत प्राप्ति को प्रधानता दी जाती थी। ये समझा जाता था कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है और यही सत्य है हमारे शास्त्रों के अनुसार। उनके पिता राजा प्राचीन बहिष्यत ने उनको तप करने के लिए वन में भेजा जबकि वो राजकुमार थे। वन में जब गए तो पहली बार जब सौभाग्य उनको और हुआ, उन्होंने शिव जी का दर्शन किया। शिव जी तो महान वैष्णव हैं। शिव जी ने उनके सौम्य व्यवहार और स्वभाव और चरित्र को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें एक गीत सिखलाया, रुद्र गीत, जिसका पठन करके वो भगवान की प्राप्ति कर सकते थे। शिवजी के आदेशानुसार प्रचेताओं ने इस गीत का पठन किया, जल के भीतर तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों के बाद स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर भगवान स्वधाम लौट गए। उधर प्रचेता कर्ण बाहर आए जल के, उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी में वृक्ष भरे हुए हैं, सब जगह जंगल ही जंगल है। उन्हें क्रोध आया। इसके बाद पिछले हफ्ते विस्तार में चर्चा की थी, आपको याद होगा वृक्षों का महत्व क्या है इत्यादि। तो फिर वनों को या वृक्षों को जब वो जला रहे थे तब स्वयं ब्रह्मा जी आए। उन्होंने वृक्षों से निवेदन किया कि उनके पास जो एक पुत्री थी उनकी, वो मारीशा उनको प्रचेताओं को दे दें विवाह में। तो प्रचेताओं ने मारीशा से विवाह किया। उसके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था दक्ष। अब दक्ष भी बड़े हो गए, वो आगे चल के बहुत बड़े प्रजापति बने। दक्ष का नाम तो हम सब ने सुना है और आगे चल के और भी जो कथाएं दक्ष शिवजी आदि के संबंध में हम सुनने वाले हैं इसी स्कंध में। तो जब अनेक वर्षों तक प्रजेताओं ने राज किया पृथ्वी के ऊपर, तो वैदिक सभ्यता के अनुसार उन्हें अब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना था या वन में प्रस्थान करना था। उन्होंने ऐसे किया और उनके पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के हवाले करके वो निकल पड़े। समुद्र के किनारे आ गए, वहाँ पर भी उन्होंने एक साधु का सानिध्य प्राप्त किया और फिर वहाँ अपनी भक्ति और अपनी तपस्या पुनः करने लगे। और इस समय जब वो योगाभ्यास में स्थित थे, उस समय तो ये प्रथा थी, ये पद्धति थी भगवत साक्षात्कार के लिए, तो नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हुए। नारद मुनि की भूमिका भक्तों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारद मुनि की उपस्थिति ऐसे देखा जाए तो प्राय हर एक महत्वपूर्ण भक्त के जीवन में देखा जाता है। आपको उदाहरण दे सकते हैं कि नारद मुनि ने किन किन भक्तों के ऊपर कृपा की, ये अनेक महत्वपूर्ण भक्त हैं। ध्रुव महाराज के ऊपर कैसे, कब कृपा की उन्होंने,
उनको माने, उनको और सौतेली माने ध्रुव महाराज को उनके पिता के से निकाल दिया था राजपाट, मतलब वो उनके साथ बैठे थे अपने सौतेली भाई के।
तो ध्रुव कहाँ जा रहे थे,
वो जंगल
वन में जा रहे थे तपस्या करने के लिए, किस उद्देश्य से, भगवान प्राप्ति के लिए। भगवान को प्राप्त क्यों करना चाहते थे, साम्राज्य उनको चाहिए था, बड़ा राज्य चाहिए था। उस समय नारद मुनि उनके पास आए, उन्होंने उपदेश दिया, इस प्रकार से नारद मुनि उनके गुरु बने। और किन के जीवन में नारद मुनि आते हैं, मृगारी के जीवन में। मृगारी एक बहुत क्रूर शिकारी था, आधा जानवरों को मार डालता था और उनको तड़पा तड़पा के फिर मार देता था। तो नारद मुनि वहाँ आए, मृगारी के ऊपर कृपा की और मृगारी को उन्होंने संत बना दिया। और वाल्मीकि महर्षि, उनका नाम पहले था रत्नाकर, ऐसे लोग कहते हैं, वो भी ऐसे ही मृगारी की तरह क्रूर शिकारी थे, उनके ऊपर नारद मुनि ने कृपा की। और इसलिए वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में नारद मुनि की भूमिका दिखाई पड़ती है, चाहे वो रामलीला में हो, कृष्ण लीला में हो, भगवान के अन्य अवतारों की लीलाओं में हो, नारद मुनि प्राय सर्वव्यापी हैं। और प्रहलाद महाराज कब
गर्भ में,
जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे अपने माँ के, नारद मुनि ने आके भगवत उपदेश दिया माँ को, परंतु नारद मुनि का उद्देश्य केवल माँ को उपदेश देना नहीं था, उन्हें पता था कि इस महिला, इस महारानी के गर्भ में जो राजकुमार हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं और आगे चल के बहुत कुछ करेंगे। इसलिए उनका मूल उद्देश्य था कि इस भक्त को वो उपदेश करें। तो गर्भाधान संस्कार तो कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी उनका तो हो गया था, अब ये गर्भ संस्कार भी हो गया। तो नारद मुनि ने आके भागवत का उपदेश दिया। तो जब कोई महिला गर्भवती होती है तो शास्त्रों को सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना, श्लोकों का पठन करना, कीर्तन करना, ये सब बहुत आवश्यक है, न केवल माँ के लिए, न केवल परिवार के लिए, परंतु जो गर्भ में स्थित शिशु है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। तो प्रहलाद महाराज तो प्रहलाद महाराज का सौभाग्य देखिए, नारद मुनि ने गर्भ संस्कार किए उनके लिए। जब वो गर्भ में थे उन्होंने आके उनको उपदेश दिया। कयाधो को नींद आ गई, कभी वो भी सो गए कथा के दौरान, परंतु प्रहलाद महाराज जो कि पेट में थे माँ के, वो नहीं सोए, वो ध्यान से सुनते रहे। कभी कभी ऐसे ही, तो ये प्राचीन एक परंपरा है कथा में सो जाना, नई बात नहीं है। या कभी कोई उपदेश देते हैं पाठशाला में, विश्वविद्यालय में भी, तो प्रवचनों में भी होता है। चक्रव्यूह और अभिमन्यु के बारे में भी आपने सुना होगा, क्या सुना है?
वो उनकी माँ जो सुभद्रा, सर वो भगवान को पूछती है कि चक्रव्यूह के बारे में, तब वो गर्भवती होती है, तो गर्भवती होते होते वो भगवान उनको बताते रहते हैं, उसी वक्त वो सो जाती है, लेकिन अंदर जो अभिमन्यु गर्भ के रूप में, शिशु के रूप में रहते हैं, वो सुनते रहते हैं और अंदर से हाँ हाँ भी कहते रहते हैं। तो लेकिन क्या हुआ, आधा ही सिर्फ चक्रव्यूह भेदने का मार्ग बता दिया, बाहर निकालने का बात होता है, तब सुभद्रा सो जाती है, तो वो देखते हैं अरे सो गए, तो बंद कर देते।
दूसरे शब्दों में, कभी कभी ऐसे प्रवचन के दौरान ये सोने की आदत जो है ये पुरानी है, कभी कभी आधुनिक काल में भी ये देखा जाता है। तो उसी तरह कयाधु को भी नींद आ गई प्रवचन, लेकिन प्रहलाद महाराज पेट के अंदर से ध्यान से सुन रहे थे। तो नारद मुनि ने और किन के ऊपर कृपा की, कौन सी लीलाओं में नारद मुनि ने भाग लिया? नलकुबेर और मणिग्रीव, वृंदावन में भी नारद मुनि जी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। नलकुबर मणिग्रीव को उन्होंने श्राप दिया, हालांकि उस समय नलकुबर मणिग्रीव वृंदावन में नहीं थे, वो तो अपने स्वर्गीय लोक में थे, परंतु वहां से उनको श्राप दिया और फिर उनका जन्म, इन दोनों का, नलकुबर मणिग्रीव का जन्म यमल अर्जुन वृक्षों के रूप में हुआ आगे चल के। और कहा नारद मुनि की भूमिका की लीला दिखाई पड़ती है, सुनाई
देती है। द्वारका में वसुदेव के पास,
द्वारका में वसुदेव के पास आते हैं, वसुदेव को उपदेश देते हैं। नारद मुनि कितने कितने असंख्य बड़े बड़े भक्तों के गुरु हुए हैं, गणना नहीं कर सकते। तो द्वारका में भी वसुदेव को आके उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जो कि हम भागवत के कौन से स्कंध में पाते हैं, 11वें स्कंध में। और नारद मुनि व्यासदेव जी के गुरु हैं, तो प्रथम स्कंध में हम व्यासदेव और नारद मुनि के बीच में जो संवाद है वो भी सुनते हैं। नारद जी ने हल्के रूप से व्यासदेव जी को डांट भी सुनाई, इतने सारे शास्त्र आपने तो लिख लिए, परंतु ज्ञान के नाम पर, वेदों के नाम पर आपने केवल इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाया है, आपने हरि भक्ति या भगवान श्री हरि की लीलाओं को वर्णन नहीं किया है, इसलिए स्वयं आप भी अंदर से असंतुष्ट हैं। इसलिए अभी आप भगवान कृष्ण की लीलाओं को वर्णन कीजिए। तो तब व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की लीला की रचना करना शुरू कर दिया। और युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं और उनको उपदेश देते हैं, और
कंस
फिर उपदेश देते हैं, और क्या वहाँ युधिष्ठिर महाराज के संबंध में और क्या करते हैं,
वन सब प्रस्थान करते हैं, जो धृतराष्ट्र छोड़ के चले जाते हैं उसके बाद।
उस समय भी नारद मुनि रहते हैं, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज के उसमें भी उपस्थित रहते हैं, और
कंस महाराज के,
कंस के पास भी आते हैं। कंस के पास आके थोड़ा छल करते हैं, परंतु भगवान के उद्देश्य के पूर्ति के लिए।
चित्रकेतु, हाँ चित्रकेतु,
चित्रकेतु के पास आते हैं, क्या बोलते हैं चित्रकेतु को, उपदेश क्या देते हैं? संकर्षण भगवान के
पुत्रयोग से वो पुत्रयोग से हर्ष विलास से वो का जन्म होता है।
तो जब नारद मुनि किनके पास साथ में आते हैं?
पर्वत
मुनि। दूसरी बार, पहली बार अंगिरा मुनि और पर्वत मुनि आते, फिर बाद में आते हैं नारद मुनि साथ में, तो वो उपदेश देते हैं। और कहा प्राचीन भविष्यत को उपदेश दे ही रहे हैं, और आगे चल के अभी प्रचेताओं को भी देने वाले हैं। इस तरह से हम सैकड़ों उदाहरण देख सकते हैं हमारे शास्त्रों में कि नारद मुनि कितने महत्वपूर्ण हैं हम सबके लिए। भक्ति के इतिहास में नारद मुनि का नाम तो आना ही आना है। नारद मुनि कोई साधारण भक्त नहीं है, बहुत विशेष है, और भगवान के प्रतिनिधि होकर अपने वीणा बजाते बजाते नाम संकीर्तन करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में वो भ्रमण करते हैं, और अचानक कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। जहाँ वो समझते हैं अपने त्रिकाल अज्ञता से कि मेरी आवश्यकता है, यहाँ प्रचार का अवसर है, तो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो किसी राजा के दरबार में क्यों ना हो, चाहे किसी राजा के यज्ञ स्थली में क्यों ना हो, चाहे किसी ऋषि के सामने वन में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसी इनकी शक्ति है, इसलिए नारद मुनि भी एक शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। तो शक्त्यावेश अवतारों के बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। ये शक्त्यावेश अवतार कौन होते हैं? ये वैसे जीवात्माएं होते हैं, एक आध बार विष्णु होते हैं, लेकिन साधारणतः जीवात्मा होते हैं जिनमें शक्ति का आवेश भगवान ने किया हुआ होता है। और हरेक शक्त्यावेश अवतार को भगवान ने किसी विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की हुई होती है, जैसे कि चतुष्कुमारों को ज्ञान की शक्ति मिली, परशुराम को दुष्ट दमन शक्ति मिली, और पृथु महाराज को प्रजापालन शक्ति मिली, शेष को भूधारण शक्ति मिली, और कोई व्यासदेव को ग्रंथों के वेदों की रचना करने के लिए शक्ति मिली, और नारद मुनि को कौन सी शक्ति मिली? भक्ति शक्ति। भक्ति भी शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति भक्ति है। संसार में तरह तरह के शक्तियां होती हैं, बौद्धिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, भावनात्मक शक्ति है, परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ शक्ति है भक्ति शक्ति। क्योंकि भक्ति की शक्ति से ऐसे चमत्कार हो सकते हैं जो अन्य शक्तियों के द्वारा नहीं हो सकते। हृदय का परिवर्तन करके भगवत प्रेम हृदय में लाके व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देके उसे भगवत धाम में पहुंचाने की क्षमता ये भक्ति शक्ति की होती है। ये एक क्रांति है। क्रांतियां तो इतिहास में हमने बहुत सारी देखी हैं, तलवारों की, बंदूकों की क्रांतियां इत्यादि होते हैं, परंतु जो भक्ति की क्रांति है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और नारद मुनि प्रधान क्रांतिकारी हैं, और नारद मुनि के शस्त्र कौन से हैं? उनकी वीणा। और गोलियां कौन से हैं? हरिनाम। और नारद मुनि और किन के पास आए थे भागवतम में? देखिए, सभी लोग नारद मुनि का स्वागत करते हैं, परंतु एक लक्ष्मण रेखा पार करते हैं ना नारद मुनि, तब वही लोग जिनको जो उनका सम्मान करते थे अब विरोध करना शुरू करते हैं। कौन सा उदाहरण है भागवतम में? दक्ष प्रजापति के पुत्र थे। कौन से पुत्र? पहले हरियश्व। तो कितने थे वो? 10,000 पुत्र थे। और नारद तपस्या के लिए गए थे, वो तो कौन मिले वहाँ? नारद मुनि। नारद मुनि तो सब जगह देख रहे हैं कहाँ मुझे प्रचार के लिए अच्छे कोई भक्त लोग मिल जाए। तो हरियश्वर देखा, उन्होंने उनका प्रचार करना शुरू किया। तो जब नारद मुनि किसी को प्रचार करते हैं तो बहुत प्रभावशाली होते हैं। तो उन सब ने सोचा कि अभी हम वैरागी का जीवन स्वीकार करेंगे, और वो घर छोड़कर चले गए। तो दक्ष प्रजापति दुखी तो हुए, क्योंकि उनका काम है प्रजा की उत्पत्ति करना, प्रजापति हैं वो। तो फिर उन्होंने और 1000 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका नाम था शबलाश्व। फिर वो भी तपस्या करने गए, उस समय भी नारद मुनि वहाँ आए, उनको भी प्रचार करके वैरागी बना दिया। और दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने श्राप दिया नारद मुनि को। कौन सा श्राप दिया?
एक जगह पे
आप रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जाके सारे तरुण लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे हो, गलत उपदेश दे रहे हो। संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को चाहिए कि वो संसार का भोग करे, और जब भोग करके उब जाएगा और समझ जाएगा कि ये संसार के भोग में कष्ट ही कष्ट है, वास्तव में सुख नहीं है, और फिर उसके हृदय में वैराग्य की भावना अपने आप उत्पन्न होगी, तब वो विरक्त जीवन को स्वीकार कर सकता है। ऐसा नहीं कि भोग के जीवन को स्वीकार करने के पूर्व ही बिना संसार का अनुभव किए हुए वो अपरिपक्व अवस्था में विरक्त जीवन स्वीकार करने का प्रयास की करे, इससे बहुत समस्या हो जाएगी। ऐसे दक्ष प्रजापति ने बहुत अपशब्द कह दिए नारद मुनि को। तो नारद मुनि ने जब सुना ये शाप कि आप एक जगह में नहीं रहोगे, तो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया आपने, अभी मैं प्रचार करता हुआ भ्रमण करूँगा। क्योंकि एक जगह रहने से आसक्ति हो जाती है, हम भ्रमण करते रहेंगे तो आसक्ति होने के लिए कोई समय नहीं है। एक जगह जाएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे। तो नारद मुनि इस प्रकार से सब जगह भ्रमण करते हैं, अब यहाँ पर भी प्रचेताओं के सामने पहुँच गए। तो जब नारद मुनि प्रचेताओं के सामने पहुँच गए, तो इस श्लोक में क्या लिखा है कि प्रचेताओं ने क्या किया? तम आगतम, जैसे उनका वो आगमन हुआ, ते तो यहाँ लिखा ते उत्थाय, क्या किया उन्होंने? उठे। तो देखिए, जब ऐसे कोई भक्त हमारे बीच में आते हैं, तो जब हम कहीं बैठे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये पहली बात, कई चीजें बताए हैं इस श्लोक में। पहली बात है उत्थाय, हमको उठना चाहिए। बैठे बैठे हरि बोल कैसे हैं आप? ऐसे नहीं, उठना चाहिए। दूसरी बात क्या है? प्रणिपत्य, ये शब्द को हम सुन चुके हैं। कहाँ शब्द सुने हैं आप इस शब्द को? भगवत गीता में कौन से श्लोक में? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। प्रणिपत्य का अर्थ क्या है? प्रणिपात पात, पत का मतलब गिरना, निपात, और प्रणिपात मतलब पूरी तरह से समर्पित होना, नमस्कार करना, प्रणाम करना, दंडवत करना। दंड होता है, दंडवत, दंड गिरता है तो ऐसे गिरता है, तो क्या दंडवत, तो प्रणाम, तो प्रणिपत्य। फिर तीसरी बात क्या कही गई है? अभिनंद्य, अभिनंदन का अर्थात स्वागत करना। स्वागत कैसे करते हैं? कम से कम थोड़े सम्मान पूर्वक और मीठे शब्दों से। और फिर क्या बताया गया यहाँ पर, पूजयित्वा आए तो उन्होंने उनकी पूजा की, और फिर यथा आदेशम सुख आसीनम, उसके बाद नारद मुनि जब बैठ गए तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने उनको क्या दिया, बैठने के लिए आसन दिया। अतः अब भुवन, उन्होंने कहना शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी ने यहाँ अनुवाद में लिखा है प्रश्न पूछना प्रारंभ किया, क्योंकि प्रथा थी कि जब ऐसे नारद मुनि जैसे भक्त हमारे बीच में आते हैं और हम कुछ बोलना शुरू करते हैं तो प्रारंभिक जितने भी स्वागत आदि के शब्द हैं उनके बाद जब वो सुखपूर्वक आसीन के आसन ग्रहण करते हैं तब जो भी हम बोलेंगे वो क्या होगा, वो कोई अर्थपूर्ण प्रश्न होंगे कि हम अधिक पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे भोग कर सकते हैं, सही है ना? नहीं, अर्थपूर्ण प्रश्न का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे करें, भगवान के संबंध में आध्यात्मिक जीवन के संबंध में प्रश्न करना उन्होंने शुरू किया। तो अभी इस श्लोक को देखकर जो विविध शब्द हैं इन श्लोकों में, इस श्लोक में आप बताइए कि नारद मुनि हमारे बीच में आएंगे या कोई महान भक्त आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, एक एक के बाद एक शब्दों को बोलकर कहिए। पहली बात क्या करना चाहिए, उठना चाहिए, फिर प्रणाम करना चाहिए, प्रणिपत्य, फिर अभिनंद्य अर्थात स्वागत करना चाहिए शब्दों से या अन्य तरीकों से भी। चौथी बात पूजयित्वा, पूजा करनी चाहिए, फिर आसन ग्रहण, आसन देना चाहिए बैठने के लिए। जैसे जब स्वागत की बात होती है अभिनंद्य, तो स्वागत किस तरह से करते हैं, तरह तरह से होते हैं, जितने बड़े भक्त उतना बड़ा स्वागत करना चाहिए, स्वागत हर एक का करना चाहिए, परंतु भक्त को भेद करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि किनको कितना सम्मान देना चाहिए। तो जैसे वैदिक सभ्यता में अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य आपको पता, आप में से जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, अर्घ्य, ये आप में से कौन जानते हैं अर्घ्य क्या है? अर्घ्य और क्या मिलाया जाता है,
शहद मिला सकते
हैं, शहद मिलाते हैं, दही मिलाते हैं,
दही शक्कर पानी,
क्या ऑल्टर सेवा करते बताओ, दही
दही दूध भी डालते
हैं, थोड़ा दूध
दूध पानी पानी रहता है, और शक्कर या गुड़ और हनी
मध शहद रहता है। तो खैर ये मीठा अर्घ्य, तो अर्घ्य अर्पण करना, फिर थोड़े मीठे शब्दों से स्वागत करना उनको, ये सब स्वागत के विविध अंग हैं। तो ये सब कुछ करना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसे कई जगह शास्त्रों में बताया जाता है, जैसे अभी अभी जो आपने श्लोक बताया तब बुद्धि पड़ी पाते ना, जैसे हमें क्या करना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तद विद्धि प्रणी पाते ना, पहला। फिर दूसरा प्रश्न, दूसरी बात परिप्रश्न ना, या जैसे कि अतः अब्रुवन, प्रश्न करना शुरू कर दिया, परिप्रश्न ना, फिर सेवया, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह से हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में और एक श्लोक भी है कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, कौन सा श्लोक, 11वें स्कंद का,
तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शब्दे परे च निष्णातो ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्।
शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। तो तस्मात्, तस्मात् मतलब अतः, क्योंकि हमें जीवन, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, गुरु प्रपद्येत, हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए। श्रेय उत्तमम, हमारे सबसे परम कल्याण के बारे में हमें प्रश्न पूछने चाहिए। केवल संसार के बारे में या हम कैसे भौतिक जीवन में समस्याओं का, छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकें, इनका नहीं। आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रश्न करने चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। फिर शाब्दे, ये जो पहले ये दो पहला आधा श्लोक है ये शिष्य के बारे में, दूसरा आधा श्लोक है ये गुरु के बारे में। गुरु कौन होते हैं? शाब्दे निष्णातम, जो शब्द को जानते हैं अच्छी तरह से, शब्द अर्थात शास्त्र। शाब्दे परे च निष्णातम, परे च निष्ठ, और भगवान में इनकी पूरी श्रद्धा है। ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, पूरी तरह से भगवान की शरण में सेवा में रत रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हम पाएंगे कि महान भक्तों का स्वागत कैसे किया जाना चाहिए। ऐसे श्रीमद् भागवत में भी है, रामायण में आप देखेंगे, महाभारत में देखेंगे। बड़े बड़े राजा भी जब अचानक उनके दरबार में कोई बड़े साधु प्रकट हो जाते थे तो राजा उठ जाते थे और साधु को सिंहासन पर बिठा देते थे। तो कभी कभी ऐसे होता है, भक्त लोग जब किसी व्यापारी भक्त के यहाँ जाते हैं तो उठकर सम्मान से वो अपने कुर्सी में बिठाने के लिए आग्रह करते हैं कि आप बैठ जाइए यहाँ पे। भक्त लोग कभी कभी घबराते हैं उस कुर्सी में बैठने के लिए। तो ऐसे खैर एक स्वागत की पद्धति है ये अतिथि स्वागत। अतिथियों का विशेष करके जितने बड़े वो अतिथि हैं, बड़े अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े हैं, उतना ही स्वागत हमारा होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए। तो नारद मुनि वहाँ पहुँचे, नारद मुनि ने उनके ऊपर कृपा की। कैसे की? अब प्रचेतागण कैसे उनका स्वागत करेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, आने वाले श्लोक से हम सुनेंगे। तो नारद मुनि की कृपा सब जगह होती है। नारद मुनि भेद नहीं करते हैं कि मैं केवल भक्तों को ही जाके प्रचार करूंगा, केवल श्रद्धालु लोगों को ही जाके प्रचार करूंगा, नहीं। नारद मुनि को भक्ति शक्ति प्राप्त हुई है ना, तो कभी मृगारी और रत्नाकर के पास जाएंगे, जिनके कोई गुण नहीं थे बल्कि बड़े क्रूर थे, अत्याचारी थे वो, उनके पास भी गए। थोड़े ऐसे थे नलकुंवर मणिग्रीव, जो ऊपरी लोकों में होते हुए भी बेशर्म थे, सही नीति क्या उनको पता नहीं थी। और कभी कभी ऐसे कोई सभ्य व्यक्तियों के पास जाते हैं, कभी दुष्ट लोगों के पास जाते जैसे कंस, कभी कभी बड़े बड़े भक्तों के पास जाते हैं। इस तरह से नारद मुनि भेद नहीं करते, सब जगह जाके भगवान की कृपा का वितरण करना चाहते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। एवं ब्रजेश्वर प्रभु का आदेश था कि 10:15 बजे तक क्लास करें, उसके बाद में हम इष्ट गोष्ठी करें। काफ़ी समय हुआ इष्ट गोष्ठी नहीं हुई हमारी, हाँ इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, वैसे भी नहीं है लेकिन अभी खास है। तो आप सब ने प्रसाद लिया है। हरे कृष्णा, अभी निकलना है क्लिनिक के लिए स्पर्श। ठीक है, दिन को जो अपने अपने कार्यों के लिए जाना है कि आप निकलिए। प्रसाद लिया है इसका? ठीक से लिया प्रसाद?
प्रसाद
लिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।